देखिए, मेरी नजर में एक अक्लमंद औरत और एक घरेलू खातून जो हर वक्त ही फ्रेश लगे, स्माइली भी लगे, वो औरत होती है जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो करे। अब आपने क्या करना है, अपने प्लानर में लिखिए, 1:30 स्कूल से निकले, आधा घंटा घर पहुंचने में लगा, 2 to 3 बच्चों को वेलकम करने की तैयारी, जिसमें आपने उनके लिए कोई लंच बनाना है तो वो बना लीजिए, जिसमें आपने उनके कपड़े निकालने हैं या जो कुछ भी आपने शाम का सोचना है। बच्चे घर आ गए घर से, 2:30 से लेकर 3:30 के टाइम को आप रख लें बच्चों का आना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको भी शावर दिला दें, फ्रेश करें, खाना खिलाएं, उसके बाद स्लीपिंग टाइम आपका भी और बच्चों का भी। 3:30 तक जोहर भी पढ़ चुके हों, आपके बच्चे भी फारिग हो गए, दरवाजे पर्दे लगाएं, 3:30 आप सब सो जाएं, आपके लिए लाजिम है सोना। चूंके बच्चे भी सुबह से स्कूल में से आए होंगे, थके होंगे, और आप कहते हैं ना बच्चे शोर बड़ा कर, जो बच्चा ऐसा ना उसको शावर दे दें, बेस्ट थिंग है, उसके बाद नींद आती है, बच्चे की मैल दूर हो चुकी होती है। आप कमरे बंद करके छोटे बच्चे सारे बड़े जो भी आप 7 साल की उम्र तक के, आप इनके साथ सो जाए, 4:30, 5:30 भी, इवन 6 बजे तक भी अगर आप सो जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। असर की अजान ही आपको बता आगे जाके 6, 6:30 बजे होनी है। नॉर्वे और ये यूरोप में जो भी कंट्रीज हैं साइड पे, इनके लिए बेस्ट टाइम सोने का जोहर से असर होगा, रमजान में आप सो जाएं, कुछ और नहीं करना, सब सो रहे हैं, आराम से 6 बजे उठे। अब 3 घंटे उधर नींद थी ना, तो 3 घंटे आपके इधर आ गए, गिन लीजिए 6 घंटे तो हो गए। एवरेज नींद हमारे जो लिए जरूरी होती है वो 6 घंटे होती है। चले हैं, अब 6 बजे उठे, अब क्या करेंगे, आप ऑफ कोर्स असर की नमाज पढ़ेंगे, अभी आपको बताया कि छोटे बच्चों को साथ पढ़ाएं, बड़े भी साथ होंगे जो भी होगा। अब आप क्या करें कि इस वक्त को बच्चों के होमवर्क, सपारा पढ़ना है, जो कुछ भी बच्चे घर में कर करा रहे होते हैं उसका वक्त बनाएं, और अपने लिए आप कुकिंग टाइम बनाएं। कितना को वक्त लगेगा आप देखें कि 7 से 8 से 9 से 10, 10:30, 11:30, आप सब जानते हैं 10:45 पे रोजा शुरू होता था, और आखिरी दिनों में तो और भी आगे पीछे होता है। इवन पिछले साल मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 11 o'clock भी रोजे खुले हैं। कितनी को इफ्तारी आपको बनानी है, सिर्फ वक्त पे नजर रखें आप देखेंगे 4 घंटे आपको फिर मिल रहे हैं असर के बाद से मगरिब तक में, जिसमें आप कपड़े धोएं, कपड़े इस्त्री करें, आप 1 घंटा बीच में स्काइप पे चैटिंग कर लें, आप फोन पे बातें कर लें, आप वक्त जाया कर लें जिसको आप कहते हैं कुछ भी। और अगर इसी वक्त के दौरान अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं, मिसाल है कि आप नाजरा पढ़ाती हैं, कायदा पढ़ाती हैं, उस वक्त में आप अपना और डेली का सवारा पढ़ लें, जो आपने खुद दौरा कुरान में तो आप साथ सुनेंगे ना, सुनेंगे भी और साथ उसको समझेंगे। आप अपना उस वक्त पढ़ें जब आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बच्चे के मामा हमें नहीं कहती पढ़ो, खुद भी पढ़ती हैं, हमें नहीं कहती सो जाओ, खुद भी सोती हैं, हमें नहीं कहती खा लो, खुद भी खाती हैं। सिंपल बात है, जो बच्चों से कराना है वो खुद करें। इसी दौरान मगरिब की अजान, मगरिब की नमाज, मगरिब से ईशा के बिटवीन के टाइम को आप मगरिब की नमाज और खाने पीने के वक्त पे रखिए। आप सब जानते हैं डिफरेंट जगह, अब मेरी ये बात इस वक्त भी बाहर के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हर एक अपने हिसाब से मैनेज कर ले। मगरिब से ईशा का वक्त जिसमें आपने क्वालिटी टाइम्स गुजारना है अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों को पूरे दिन की थकन के साथ जो भी कर करा के तरावी पढ़नी है, फजर से पहले के लिए बीच में अगर आपके पास वक्त है टाइम निकालें तो 1 घंटा 1.5 आप फिर भी सो सकते हैं, 2 घंटे भी सो सकते हैं, ये अब आपका अपनी रूटीन है। करना क्या है, वक्त पे नजर रखनी। इस साल जो हम दारा कुरान करेंगे इंशाल्लाह, उसका थीम ही टाइम मैनेजमेंट है, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि कब वो शुरू हो और हम उन टिप्स को लें। और ये सारे लेक्चर्स भी उसी का हिस्सा है कि जब तक मैं और आप मिनट और लम्हों और सेकेंड्स पे नजर नहीं रखेंगे, हमारी जिंदगी की बरकत नहीं होगी। सोने के वक्त पे खाएं, खाने के वक्त में जागें, जागने के वक्त पढ़ने के, मेहमान आ जाएं तो आप खाना पकाने लग जाएं, मेहमान चले जाएं तो आप जाके सो जाएं, ये तो बेतुकी बात है। बिलीव में जिंदगी की इतनी बड़ी दौलत है जो आज इंसानों की अक्सरियत जाया कर रही है, जिसमें मैं अपने आप को ले लूं, हम में से हर एक कहे 24 घंटे 24 थैलियां मैं इसको क्यों जाया कर रही हूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर सारे अब इसी पे होते जाएंगे, क्योंकि हमारा थीम जो होता है उसी के मुताबिक वेलकम रमजान है। लेकिन हम वापस आ जाते हैं अपने बच्चों की बात पे, टाइम पे नजर रखें। अगर आप 24 घंटे का ब्रेक डाउन बाद में जाके देखेंगे ना, तो 6 से 7 घंटे आप सो भी चुकी हैं, आपने एक डेली पारे के लिए 3 घंटे भी निकाल लिए, आपने 4 घंटे में कुकिंग, खाना पकाना, घर की सफाई, इवन घर में दूसरे लोगों को बाहर पाकिस्तान इधर उधर फोन करना है वो भी कर लिया, फिर आपने अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ बैठकर बड़े आराम और सुकून से इफ्तारी भी कर ली है, और क्या चाहिए। देखिए ये घर जन्नत है जिस घर में सब लोग एक ही सोच के साथ चलते हैं। हमारे घरों की बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह ये है, जिस वक्त एक खा रहा है तो दूसरा कुछ और कर रहा है। अब वो खा के गया, वो अब दोस्तों के साथ निकल रहा है या कुछ और कर रहा है, तो माँ को दूसरे का खाना पकाना लग गया। माँ क्या आपकी नौकरानी है? क्या वो आपकी मेड है? क्या वो आपकी कुक है? क्या मामा मामा, ये कोई बच्चों के बोलने के तरीके? अक्सर लोग देखिए कि इस तरह बात करते हैं। मैं किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा, जी मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं, जी मेरी सुनता नहीं है बच्चा। तो मर्द है वो, मर्द बात भी अपने गुस्से में करते हैं, तो वो कहते हैं, मैंने उसे कहा, क्यों, तेरा बाप है ये जो तेरी नहीं सुनता? बाप नहीं मानते, बच्चा तो मानता है। तू कितने बंदों को चिल्लाता है? तेरी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? कहता, जी मैं तो वहां 400 बंदे को रोज मैनेज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 400 बंदे को तू मैनेज करता है, तो ये 4 साल का बच्चा तुझसे क्यों नहीं डरता? तेरे अंदर नक्शा। फिर इसी तरह कहते, मेरे पास माए भी बहन बीवियां आती हैं, जी ये बच्ची है ये सुनती नहीं है। मतलब ये अब ये 12 साल की बच्ची है, ये 8 साल की है, ये 6 की। अब इसकी माँ अगर जाके किसी दीन वाले से कहती है, इसको समझाएं, ये सुनती नहीं है। क्यों भाई, ये आपकी माँ है, ये आपसे बड़ी है, क्यों भाई, क्यों नहीं सुनती? आप बाहर हो सकता है जाके 10 जगह लोगों को लेक्चर दे के आए और 10 लोग आपकी सुने, आप कहीं शेफ बने हुए और आप 10 लोगों को अपने एम्प्लॉयज को काम में रखते हैं, तो ये 8 साल की बच्ची आपकी क्यों नहीं सुनती? ये हमारे इस दौर का एक बहुत बड़ा अलमी है कि हमने अपने बच्चों के बैलेंस को खराब किया हुआ है। क्या जरूरत है कि बच्चा मेरी बात ना सुने? मैं तो नहीं उसको रोटी दूंगी, मैं तो उसे प्यार नहीं करूंगी। और ये बच्चा कभी भी ना ऐसा कहे अगर मैंने शुरू से 7 साल तक उससे प्यार के रखे हो। थोड़ा सा आगे आपको लेके चलती हूँ, 7 साल से बड़े बच्चों का रमजान कैसा हो, क्योंकि असल चैलेंजिंग ये बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे तो खुद ही तोड़फोड़ करके खेल खिलौनों से खेल खूल लेते हैं, रो भी लिया, शोर भी मचा दिया। और यहां मैं एक हल्की सी बात करके इसको शुरू करूं कि घर का माहौल सूदिंग होना चाहिए। मुझे इंतहाई हैरत होती है कि छोटे बच्चों वाले घर आज के दौर में हमारे मुआशरे में दंगल, जंगल, शोर, जंगल का शेर चीख रहे हैं, शोर रहे हैं, कर रहे हैं, और घर की हालत अल्लाह की बना, खिलौने बिखरे हुए हैं, कहीं कुशंस गिरे हुए हैं। वजह, आप लिमिटेड चीजें रखें। देखिए एक माँ अपने घर को जो मर्जी बना ले। मैं सुबह एक हदीस सुन रही थी कि उसमें क्यामत की अलामतों में से एक अलामत है कि घरों को लोग स्टेज बना लेंगे। क्या मतलब? कि घर शोपीस हो चुके होंगे, इतना सामान घर में, इतना सामान। अगर मेरे घर में बेबी बच्चा हो तो मैं तो कभी भी उसके लिए इतना मोटे सख्त खिलौने ना रखूं कि मुझे तड़का लग रहा है अभी इसको चोट पर लगेगी। इन्हीं खिलौनों से खुद ही बच्चे गिर गिर के पड़ते हैं। घर को हल्का रखें, और आपके पूरे घर में, इवन आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम आधा घंटा। अब ये जो बात कहने लगी ये बहुत इम्पॉसिबल लगेगी आपको, करके देखिए आपके बच्चों में ठहराओ, सब्र और सुकून आएगा। और वो क्या? साइलेंट टाइम। साइलेंट टाइम क्या होता है? खामोशी का वक्त है। इस वक्त मामा भी नहीं बोलेंगी, बच्चे भी नहीं बोलेंगे, ऐसे छोटे बच्चे खेलो, ऊंची नहीं, ऐसे इशारा समझाइए। आपने बोल बोल के अपनी और उनकी क्यों मत मार दी है? मुझे तो हैरत होती है कि आज मां बनना इस बात का सबूत बन गया अब आप कुछ नहीं रह सकते। मियां से आप नाराज हैं, बच्चे नहीं आपके पाल रही, ससुराल से आपका मूड खराब है, आपके पोते पोतियां नहीं मैं पाल रही, अपने मां बाप से अलग झगड़ा, आपको कहां टाइम, तो जा मुझे भेज दिया, मैं अभी उन्हीं को राजी कर रही हूं। क्या हो गया आपको? बच्चे पालना कोई जंग है क्या? ये दुश्मन है, ये इंसान है भाई। आपके बच्चे, आप कदमे खड़ा करके देखें, आपकी टांग से भी छोटा बच्चा है। इसे कितने से बच्चे ने आपकी मत मार दी है, आप और मैं कोई काम कैसे करेंगे दुनिया में? तो मैं कभी भी इसी से इत्तफाक नहीं करती कि बच्चों वाले घर में शोर होना है, ये लाजमी है। बच्चे बच्चे बच्चे, बिलीव में बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए। और जिस पौधे को ज्यादा छेड़े उतना ही वो गलता है। ज्यादा पानी भी दे देना पौधों को तो गल जाते हैं। मुझे लगता है आज हम अपने बच्चों को ज्यादा पानी दे रहे हैं, ऐसे उनको सर पे चढ़ाया हुआ है हमने उनको। हर हर बार क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तुम्हारी ये चॉइस। छोटा बच्चा पेंसिल भी अपनी पसंद की लेता है, शॉर्पनर भी उसको अपनी पसंद के लेने हैं, कॉपियां भी उसको अपनी पसंद की लेनी है। तो मुझे बताइए, ये 7 साल का बच्चा आपके काबू में नहीं है, तो खैर से जब ये 15-16 साल का जवान बंदा बनेगा तो ये आपके काबू में होगा? ये हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। मुझे पता है मेरी बात माओं को अच्छी नहीं लगेगी, बट 7 साल की उम्र तक बच्चों की जो आदतें बना दी हैं, ये अब अगली दिनों में ये बच्चे आपके लिए नासूर बना रही हैं। आपकी बात ही नहीं समझते। पहले बच्चा एक आवाज पे आता था, अब बोलते रहो, चीखते रहो, अब कहते बड़ा हो रहा है, अकल ही नहीं, ढीठ हो रहा है, समझ ही नहीं रहा मेरी बात को, इसको अकल ही नहीं है। और यकीन करें, वो माएं कहां से आएंगी जो ये तरबियत करें? अब ये भी एक क्वेश्चन है। जो तरबियत अल्लाह की किताब ने करनी थी ना माओ की, वो तरबियत निकल गई है। सीधी सी बात है, जब माँ को खुद माँ बनना नहीं आया तो वो बच्चे को बच्चा बनना कैसे सिखाएगी। देखिए ना, बगैर ड्राइविंग के आप इस मुल्क में ड्राइविंग कर सकते हैं? घर के आप पोर्च में तो शौक पूरा कर लें, ये घर के गेट से आपकी गाड़ी बाहर जा सकती है? लर्नर के साइन के साथ आप हाईवे पर गाड़ी लेके जा सकते हैं? जिस मुल्क में, जिस दुनिया में आप पर मैं गाड़ी नहीं चला सकते बगैर लाइसेंस के, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते? क्या आप अपनी आपको माँ बनाने का हकदार समझते हैं अगर आपको अपने बच्चों को डील ही नहीं करना था? आप देखें, माँ चीखे कि बच्चे चीखेंगे, जो माँ ऊंची बोलती है उनके बच्चे भी ऊंची बोलते हैं, जो माँ चिड़चिड़ी सी है ना, जली कुटी, उसके बच्चे भी जले कुटे होंगे। आज आप पढ़िए, डॉक्टर्स कहते हैं प्रेगनेंसी में माँ के अंदर जो की आते हैं वो बच्चों में जा चुकी होती हैं। माँ जो है वो अगर ठंडे स्वभाव की, बच्चे भी ठंडे। मैंने अपनी फैमिली और अपने जानने वालों में कई फैमिलीज को ऑब्जर्व किया है, आज तक मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, यानी वो जिसको कहते हैं अम्मा जी नतारा, समझ गए हो ना, यानी मैंने उससे ये नतारा निकाला है कि जो माएं ठंडे स्वभाव की होती हैं ना, उनके बच्चे कूल होते हैं, चीखते नहीं है। ये हम बच्चों को खुद ही हाइपर करते हैं। जो माँ चीख के बात करती है ना, कुछ अरसे में उनके बच्चों को भी, वो फिर सीधी बात सुनते ही कोई नहीं, वो कहते हैं अभी मामा ट्यून ही नहीं हुई, अभी देखना मामा कैसे बोलेंगी, अभी देखना मामा की कैसे शुरू हो जाएगी, अभी देखना मामा कैसे चीखेंगी। और अक्सर बच्चे कहते हैं ये बात कि जब हमारी मामा बोलती है ना तो हम कान बंद कर लेते हैं, मामा ने चीखना है अभी देखना, अभी तो मामा और बोलेंगी। और कभी मामा ना बोले तो पूछेंगे सर में दर्द है मामा, आपको बुखार तो नहीं है? क्यों, हमने उनको आदी कर दिया। देखिए, ये रुई के गोले हैं, ये मासूम फूल हैं, इनको सीखना है तो अल्लाह की किताब सब्र आपको देगी, शुक्र वो सिखाएगी। आप इसको तोहफा समझें, आपको कोई फूलों का भी बक्के को ला दे तो आप कैसे पकड़ती हैं? एक पत्ती ना गिर जाए, हम उसको इतने प्यार से पकड़ते हैं, इन बच्चों को क्यों पटक पटक के मारते हैं? कभी बच्चों के साथ दुरुस्तगी ना करें। 7 साल की कम उम्र में बच्चों को एक मौका ना आए कि आप डांटें, आप कहेंगे ये कौन से बच्चे हैं, ये किस प्लेनेट पे होते हैं, बच्चे तो मार खा के सोते हैं, डांट खा के सोते हैं। सॉरी, वो बच्चे की गलती नहीं, वो आपकी गलती। जो बच्चा रोए समझ लीजिए माँ की गलती है, या तो उसको चुभने वाले कपड़े पहनाए हैं, या गर्मी में मोटे कपड़े पहना दिए, या आपने फैशन पे बच्ची को गोटी वाला कुर्ता पहना दिया, उसको चुभ रहा है, वो रो रही है, आप कहती हैं इसको पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई है, ये हो गया। अक्सर शादियों में देखे बच्चे चीखो पुकार रखते हैं, है कि नहीं? उनको क्या लगे आपके इन सारे लटीकों से जो आप उसके लिए कर रहे हैं? तो छोटे बच्चों को अगर टैकल किया होगा ना, तो बड़े बच्चे मुश्किल नहीं होंगे। थोड़ी सी टिप्स ले लीजिए कि 7 साल से बड़े बच्चों को हम रमजान में कैसे इन्वॉल्व करें। नंबर एक, ये जो प्लानिंग का सिलसिला शुरू किया उसमें अभी से बच्चों से बात करें। बच्चों, इस पूरे महीने में, रमजान ट्रेनिंग का महीना है ना, फिर बाद में भी इसको कैरी ऑन करते हैं, हम जितनी नमाजें घर में होंगी वो मिल के पढ़ेंगे, समझ गए? अब 7 साल से बड़ा आपका बच्चा है, मेरा ख्याल है कि उसको नमाज आती है और उसको आपके साथ मिलके पढ़नी है। आप बेटी को बेटे को साथ लेके चले, 5 नमाजें कोशिश करें अपने बच्चों के साथ पढ़े। ये चीखो पुकार ही खत्म हो जाएगी, उठो नमाज पढ़ो, उठते नहीं फोला। और जब फिर ईमान के जोश बढ़ते हैं तो हमारी जुबान पे गालियां भी बढ़ती हैं, काफर हैं आग में जाएंगे, मुनाफिक हैं सोए हैं उठे हैं, ये कोई तरीका नहीं। आप सुबह उठाते कैसे हैं बच्चों को, आपको पता है? आज अकलमंद लोग आपको सेशंस देते हैं कि अपने बच्चे को सुबह उठाओ कैसे, और बाज बच्चे तो कहते हैं हमारे लाशौर में पड़ा हुआ, जब तक माँ की गाली नहीं पड़ती है उठते नहीं है। मैं ऐसी माँ को जानती हूँ कि पहले बुलाती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब बच्चे नहीं उठे, फिर गालियां देती हैं 2-4, तो फिर बच्चे उठते हैं, तो वो गुस्से में जाके 2 नफिल पढ़ के बैठ जाते हैं या फर्ज पढ़ते हैं। दिन का आगाज इतने गुस्से से ना आप करें, आप प्यार करें, उसके बालों में उंगलियां फेरें, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा समझें। 7 साल का जो बच्चा ना, इसके लिए एक टिप लिख लें, आप उसको 10 साल का समझें। आज जो मुआशरा ना, इसमें आपके बच्चे जो अपनी उनकी नॉर्मल एज है ना, जो दिखती है आपको, उससे कम अज कम 3-4 साल बड़े हैं मेंटली। ये भी एक माँ का बहुत नेगेटिव नुकसान होता है कि बच्चे को छोटा समझती है। जब बच्चे को छोटा समझेंगे ना, तो वो अपना इजहार करने के लिए फिर कुछ ना कुछ मुजाहरे करेगा, और जब आप उसको बड़ा समझेंगे ना, तो आप देखिएगा कि वो कई चीजों में भी वो कर नहीं पा रहा, लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट कर रही होंगी। फिर इसके बाद दूसरी टिप इस उम्र के बच्चों के लिए, लाजिम है कि सहरी और इफ्तारी साथ करवाएं। रोजा रखें ना रखें, देखिए अब यहाँ बड़ा अहम सवाल है जो मुझे पता है हर साल की तरह बहुत सारे लोगों ने बाद में पूछना है कि बच्चे पे किस उम्र में फर्ज है, अच्छा जब नमाज फर्ज हो जाती है तब है, या जी बच्चियां बालिग होती हैं तब है। सीधी सी बात है, जब आपका बच्चा 7 साल से अगले साल में आ गया ना, आपने सहरी भी उसको साथ करानी है और इफ्तारी भी साथ करानी है। सहरी क्या है? उसका नाश्ता। बल्कि ये जो भी आपको प्लानर दिया है बड़े बच्चों की माओ के लिए, तो ये एक सहूलत हो जाएगी। फिर सुबह 7 बजे उठ के या 8 बजे उठ के कोई नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को उठाएं। आप कहते हैं नहीं फिर नींद खराब होती है। देखें मान लीजिए मेरी बात कि 8 घंटे सोने से भी वो सुकून नहीं मिलेगा जो ये नींद तोड़ तोड़ के उठना होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि कोई शख्स उनके पास आया ऐसी देखने कि करते क्या है, इनके क्या मामूलात है। इल्म वाले लोग थे, उनकी अपनी जिंदगी और थी। तो वो कहते हैं कि मैंने एक रात में इमाम बुखारी को 70 से 80 बार सो सो के उठते देखा है। यानी पूरी रात गफलत की नींद ही नहीं आई। गफलत में आते थे, एकदम कुछ आता था और उठ के कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे, या कोई इल्म का मसला था, कोई बात पे गौर व फिक्र है, कभी उठे तो नफिल पढ़े। यानी अल्लाह ताला तो कुरान में कहता था तजाफ जुनूब हम अनिल मदाजी यदून और अब्बा हम खौफ हम बतमा। सूरत सजदा में आप रात को पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों के तो करवटें रातों को बिस्तरों से अलग हुई होती हैं, सारी रात नहीं सोते, वो तो मुनाफिकों की अलामत है। सूरत मुनाफिक में पढ़े कानम खुशबू मुसन्नदा, फरमाए ये तो लकड़ियों की तरह रातों को बिस्तर में जिस बिस्तर पे सोते हैं सुबह उठते हैं। तो आप अपने बच्चों की रात की नींद तोड़े, अगर उनको दोबारा भी सोना पड़े तो सोएं, लेकिन सहरी की आदत है। अब फायदा क्या होगा? अब आप देखिए 7 साल की उम्र का बच्चा आपके साथ सहरी खाता है, चलिए आज के हिसाब से हम देखते हैं 3 बजे उसने सहरी खा ली, आप सोई तो वो भी दोबारा सो जाएगा। 8 बजे उठा, आप कहते हैं उसको भूख है नहीं है, बच्चे अक्सर ही भूखे जाते हैं, ये एक और इशू है जिसका इफ्तारी और रमजान से ताल्लुक नहीं। मैंने पाकिस्तान में अक्सर बच्चों को सुबह भूखे जाते देखा है, माएं साथ उनको लंच बॉक्स दे दें, पैसे दे देती हैं, बच्चे सुबह खाते ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए जो बच्चा सुबह भूखा गया स्कूल जाते है उसको भूख नहीं लगेगी? नहीं। आप उठा उसको दूध का ग्लास दे दें, एक बनाना दे दें, कुछ भी दे दें, आपके नाश्ते का काम खत्म है। इसी तरह बच्चों को दिन में फिर जब स्कूल जाएं तो इस तरह से खिलाएं कि जब मगरिब का वक्त हो तो उनको भूख लगी हो। इधर मुझे अंदाजा है कि एक सवाल आप लोगों के जहन में आना चाहिए आएगा, और वो क्या है कि बच्चों को फिर हम अगर रात 11 बजे तक के लिए बच्चे जागे तो फिर उनकी नींद कैसे बुरी होगी? देखिए फिर वही बात कहूंगी कि बच्चों को अगर आपने आज से 3 साल बाद रोजे रखवाने हैं और वाकई सही वक्त पर नमाजें पढ़ानी है, ये भी तो एक बड़ा फितना उठ जाता है हर साल कि जी आप तो मगरिब से पहले ही रोजा खोल लो। आप सब जानते हैं जो जो इश्यूज उठते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आप बच्चों को सारी रात जागने दें, देखिए नानी के घर गए होते हैं सारी रात जागते रहते हैं, क्यों जागते हैं? मजा आ रहा होता है, रूटीन बनाए उनकी, उनको अपने साथ बैठे, इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा बच्चे ने रोजा नहीं रखना, आप उन्हें कह दें कि ये आप खाएं और उसके बाद कुछ देर में रख दें। अब आप देखिए कि बाज दफा क्या होता है कि बच्चे रोजा रखा तो वो तोड़ते ही नहीं है, वो कहते हैं हमने खा लिया तो हमने नहीं तोड़ना, रखने दे दोपहर तक है जो भी उन्हें को बेटा। बच्चे एक दिन में 3 रोजे रखते हैं, याद है हम लोग भी 3 रोजे रखते थे, चिड़ी रोजा कहाँ रखा हुआ, रोजा मुंह में रखा हुआ है, ये दिन में 3-4 बार रखना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका स्टेमिना बढ़ाएं, आप फील करेंगे फायदा होगा। फिर उसके बाद बड़े बच्चों के लिए पूरा सपारा तो नहीं, लेकिन एक काम जरूर करें, रमजान में वो रोजा रखे ना रखे कम अज कम 1 रुकू कुरान का रोज पढ़ना उनके लिए लाजिम कर दें। आप अपने बच्चों को भी प्लानर बना दें कि बेटा रमजान में आपने मसलन सूरह बकरा पूरी पढ़ लेनी है, रोज का 1 रुकू होगा, खुद ही देखिए 40 रुकू हैं, उसको आगे पीछे कर लीजिए हर एज के हिसाब से। 7 साल का है तो उसको 1 रुकू पर रख दें, सूरह बकरा करवा दें उनको पूरी। 8-10 साल का बच्चा है तो आप उसको 5 सिपारों पर लगा दें। अगर आपके 12-14 साल के बड़े बच्चे उनको 10 सिपारों की आदत डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनाएं जिससे कि वो बाद में काम करें और इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये बच्चे और बच्चियां, या फिर अब मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा तकलीफ थे एक जो क्वेश्चन आता है जहन में, और वो क्या है कि बच्चियां काम नहीं करती। आप सच बताएं, अब आपको मैं कहूंगी तो आप तो इतना कुछ बताएंगे मुझे कि आपकी बच्चियां शर्मिंदा ही होती रहेंगी। हम अपनी माँ के साथ कितना काम करते थे, मेहमान घर में आ जाते थे तो माँ बैठ के वहां से इशारा करती थी 2 कप चाय 7 बिस्कुट, समझ गई, ये इशारों से आपने समझ लिया। आज जी बच्चियां काम नहीं करती, काम छोड़िए बच्चे पास नहीं आके बैठते, ये नहीं सही। आपकी बच्ची 8-9 साल की है और उससे बड़ी के लिए तो ऑफ कोर्स उसको काम करना चाहिए, इफ्तारी वो बनाएगी, साथ आप रहें। देखिए आपका काम है पीछे रहना, बच्चों को आगे लाएं, बच्चियों से काम कराएं, घर के अंदर मुश्किल काम है लड़कों से करवाएं। आज उलट नहीं हो रहा, बूढ़ा बाप गार्डन साफ कर रहेगा बच्चा उठता भी नहीं है, माँ बेचारी 10 लोगों का खाना पका रही है बेटी बर्तन भी नहीं उठाती। इसी उम्र में बेटे बेटियों को घर की आदत डालें काम की, वैक्यूम घर का बेटों से करवाएं, कोई बुरी बात नहीं है, बाहर लॉन साफ कराना है आप अपने बच्चों से करवाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे उससे फायदा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको भी फजर से लेकर इशराक तक जागने की आदत डालें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो खाना उनको देते थे उसमें थोड़ा वक़्त पहले रखवा दें, यानी उसमें ड्यूरेशन ऑफ जो दो मील्स के बीच का उसको बड़ा करवा दें, आदत डलवाएं। और इसी तरह से 8 साल से ऊपर के बच्चों को सिर्फ दो तरावियां ही सही। ठीक है आप 8-20 ना पढ़ाएं, दो तराविया, जिसको आप नफिल कह लें, शब बिदारी कह लें, आप उसके अंदर कोई भी नाम ले लें, आप उसकी आदत डालें कि बेटा जी ये तो आपको करना है, ये आपने काम करना है। फिर इसी तरह से छोटे बच्चों को तो आपने अपने पैसों में से सदका करना सिखाया था ना, अब बड़े बच्चे हैं ना, उन्हें उनके पैसों में से सदका कराएं। आप बताएं बेटा जी आप सदका क्या कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक, नानी है, दादी है, बाज दफा एक ही घर में रहते हैं, बाज दफा एक ही शहर में रहते हैं, चले एक घर में नहीं, एक शहर में नहीं, दूसरे मुल्क में, आजकल क्या मुश्किल है। बच्चों से रिश्तेदारों की खिदमत करवाएं। घर में दादी है, आपकी दादी है बेटा, आपके लिए 15 मिनट लाजिम है अपनी दादी अम्मा के पास बैठना। 7 साल की उम्र से आप जरा ये आदत तो डालें अपने बेटे और बेटी को। हम एक एवरेज डिस्कस कर रहे हैं, जब से लेक्चर शुरू हुआ 4 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 15 मिनट एक बच्चे ने आके बैठ के दादी से बातें करनी है, पाँव दबा दिए, कहानी सुन ली, तेल लगा दिया, और कुछ नहीं, लाड कर लिए। मुझे बताएं क्या दादी को अपना बुढ़ापा खूबसूरत नहीं लगेगा? वो बच्चा उठ के गया, दूसरे बच्चे को उसका, और उनको टाइम बताएं, ये टाइम आपका दादी के साथ गुजरना है, दूसरे का ये। अब पता चला चारा इकट्ठे दादी के साथ आगे उसकी मत मार दी, ये भी नहीं करना। तो देखिए ये रिश्ते सिखाएं, मोहब्बतें करना सिखाएं। दादियां अक्सर मैं देखती हूँ मुंह देखती रहती हैं, छोटे होते हैं बच्चे पैदा होने पर यही दादियां खुश होती हैं, बड़े होके अक्सर शिकवे के होते हैं, बैठते नहीं, उठते नहीं। माँ ने नहीं सिखाया, बाप ने नहीं सिखाया। जब मां सास के पास 15 मिनट सिर्फ इस रंग में बैठ जाए, कोई काम नहीं है, ऐसे ही बैठ जाओ कंपनी, बेटा बैठ जाता है माँ के साथ। जिन बच्चों ने 7 साल तक ये देखा होगा वो बताइए कि अपने दादी दादा के पास नहीं बैठेंगे, दूसरी जगह रहते हैं, मिसाल घर में नहीं, एहतमाम के साथ, कम अज कम चले, अगर आप कहते हैं वीकडेज में मुश्किल है, हफ्ते में एक दिन बच्चे को सिखाएं कि आज सिर्फ इसलिए उधर जा रहे हैं कि आपने दादी के साथ बैठना है, नानी के साथ, खाला के साथ, जो भी रिश्ते हैं, फुफो है, और कुछ नहीं। आप कहते हैं हमारा तो इधर रिश्तेदार कोई नहीं, अपनी दोस्त है, आपकी दोस्त है ना, वो आपके बच्चे के लिए क्या है, आप क्या है अपनी दोस्तों के बच्चों के लिए, खाला ना। कभी उनको कहें जाओ अपनी खाला के पास बैठो, जाओ उसकी खिदमत करो, जाओ उससे पूछो कोई काम है। आप अपनी बेटियों को कहें जाएं आप खाला का काम करके आए। बिलीव में खिदमत में अजमत है। हम सब बचपन से ये बात सुनते थे, ताने ही दे दे के माए मार देती थी इस, जब बड़े होते थे उस दौर में, कि जी खिदमत करो, नानी के घर जाना, पहले से सबक पढ़ा के भेजते थे घर वाले कि वहां जाके काम करना, काम करें, ये नहीं कि आप घर वाले काम करते रहे और आप उनके साथ बैठे रहे। आज हम अपने बच्चों को वो सिखाते ही नहीं है। घर में आपके कोई मेहमान है, बुलाइए, आप पास बैठे, बच्चे भी कंपनी दें, 10 मिनट बैठे, 15 बैठे। ये जो एक पढ़ाई का रोना हमारे दिमागों पे चढ़ गया, माफ कीजिएगा मुझे, इसने भी हमें अपने बच्चों की तरबियत से रोक दिया। इन्होंने पढ़ना है क्या? 24 घंटे पढ़ते हैं, जाके देखें जरा कंप्यूटर पे कितना वक्त जाया करते हैं, ये किताबें नहीं पढ़ रहे होते, ये बीच में हो सकता है कितनी गेमें खेल रहे हैं। माओ के फोन बच्चों के हाथ में कतन ना दें, पूरा महीना आप अपना फोन भी अगर बंद कर दें और लिमिटेड यूज करें, बच्चों को भी ना दें, बच्चों के बेकार मशगले खत्म कराएं। आप देखेंगे घर में एक कोऑर्डिनेशन होगी, और फिर इस सारे प्लानर में अपने हस्बैंड के साथ एक अकेले में बैठ के मीटिंग करें कि देखें मियाँ साहब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश में कामयाब कब होंगी, जब आप भी मेरा साथ देंगे। अब बाप अगर तरावी के लिए जाता है तो बच्चा भी जाएगा, बाप नमाज के लिए फजर के लिए गए तो बच्चा भी जाए। भेजिए, ये भी एक टिप नोट करें, 7 साल के बेटे, लड़के खासतौर पर ऑफकोर्स, उनके लिए तो घर में नमाज पढ़ना बिल्कुल ममनू है। अपने मियाँ से पहले चुपके से सेटिंग कर लें कि इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊंगी ना इसके साथ मस्जिद में, अब सुबह फजर पे आप जाइए, आप जाएं ना जाएं इसको ले जाने के लिए लेकर जाएं। आप देखिएगा ये जो एक खूबसूरत होम स्वीट होम का बॉन्ड बनेगा, मैं आपको जिस बात पे वाइंड अप कराती हूँ, और वो क्या है, एक महीना अगर जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं इसको बुनियाद बनाकर आप खुद भी इसमें 10 बातें ऐड कर लें, अपने माहौल अपने हालात के मुताबिक, कोई चीज मैंने सही नहीं कही या मैंने जो कहा है वो मुमकिन नहीं, तो आप मुझे बताएं। एक महीना अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह रमजान गुजार गई, यकीन करें आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी में बिग डिफरेंस देखेंगी। आप फील करेंगी कि रमजान का असर ना सिर्फ आपके ऊपर हुआ है बल्कि इनके ऊपर हुआ है। नहीं जो करना अपने बच्चों का नाम लेकर, ये लिख लें अब आखिर में बातें। नंबर एक, एक नमाज भी लेट नहीं पढ़नी बच्चों का नाम लेकर। कुरान सीखना है आपने बच्चों का नाम लेके। अब देखिए जो बात मैं कहने लगी ना, ये बड़ी कड़वी बात है। आज एक औरत अगर बच्चे का नाम लेकर कुरान सीखने सिखाने से रुकती है, कल क्या वो बच्चा आंखों की ठंडक बनेगा? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन होगा? आप इस मासूम की वजह से तो नमाजें कज़ा कर रही हैं, आप तो इसकी वजह से कुरान से दूर हो गई, आप तो अल्लाह के दीन की खिदमत से दूर हो गई, आपके लिए ये बच्चा आंखों की ठंडक होगा? किसने हमारे बच्चों के दिल में हमारे लिए मेहर डालनी है? अल्लाह ने डालनी है। आप अल्लाह के रस्तों में भागें, अल्लाह डालेगा उनके दिल में आपकी मोहब्बत। जितना हम अल्लाह से जुड़ते हैं, हमारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे। हम अल्लाह के काम करेंगे, हमारे बच्चे हमें कम सताएंगे। मैं कह सकती हूँ हमारे बच्चे क्यों रोते हैं, क्यों सताते हैं, क्योंकि हम फारिग हैं। हमने मौका दिया हुआ उसको, खूब सताओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बैठी हुई हूं। ऐसे हमने अपने आप को रिलैक्सेशन दे दिया बच्चों के नाम पे कि कुछ भी ना करो, बच्चों की माँ है, और सारा घर हमदर्दियां दे रहा होता है, हाँ बच्चे की माँ है ना, बच्चे की माँ। भाई क्या हो गया आपको? बच्चे की माँ है, आप देखिए जानवरों में देखिए चार चार बच्चे एक साथ होते हैं। कभी को बिल्ली घर में नहीं बैठी देखेंगे आप, कभी भी किसी शेरनी को आप ये नहीं कहेंगे आप मैं जाके शिकार नहीं खेल रही, मैं बैठ गई मेरा बच्चा हो गया। टेक इट ईजी। अगर आप चाहते हैं ये कल आपकी आंखों की ठंडक बने, आप इनको अपने साथ रखें। आपको अच्छी तरह याद होगा बचपन में लड़कियों को, हम जब बच्चे थे या छोटे थे, कितना घरदारी का शौक होता था। माँ रोटी पका रही है, मैंने भी पकानी है, वो थोड़ा सा आटा दे के आपको साथ खड़ा कर देती थी, आप भी बेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, चाहे टेढ़ी मेढ़ी करें जो भी, जी पकाना शौक होता था। धनिया तोड़ रहे हैं, हंडिया बना रही है माँ, तो आप साथ लगे हुए अपने ऊपर ऊपर करके हमने देखना। इसी से बच्चियां सीख जाती थी। आज 8 साल की बच्ची हंडिया पका सकती है? मैं कम से कम 5 सिस्टर्स ऐसी जानती हूँ अपने फैमिली में, इर्द गिर्द जानने वालों में, कि 8-10 साल की उम्र में बीमारियों की वजह से या कोई और घरेलू हालात की वजह से माएँ काम नहीं कर सकती थी, बच्चियाँ घर संभाल लेती थी। आप मेरी बात की तस्दीक करते हैं? अपनी बच्चियों को साथ लगाएं। और सबसे बड़ी बात, इंशाल्लाह एक टॉपिक मैंने इन्हीं दिनों के जो अगले लेक्चर्स है उसमें बच्चों के बारे में ये देना है कि बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे करें, उसमें ये चीज आनी है। लेकिन यहां मैं इसका इशारा करूं, डोंट लेट देम फ्री। अपने बच्चे और बच्ची को फारिग ना छोड़ें, कीप देम बिजी, उनको मसरूफ करें। ये छोटे बच्चे को भी मसरूफ करें। ये जो खेल रहे होते हैं और चीजें तोड़ रहे हैं और इधर के उधर क्वेश्चन पे, वो कुछ काम मांग रहे होते हैं, आप उनको बिजी कर दें, उनको थका दें, ऐसा थका दें कि आप 3 घंटे वो खूब सोएं जिसमें आपने दौरे कुरान करना है। माशाल्लाह जो अभी आपको बताया कि स्केड्यूल हमारा मंडे से शुरू हो रहा है, आपके बेबीज हैं साथ लेकर आए, एक दिन रोएंगे, दूसरा दिन रोएंगे, तीसरा दिन ठीक होंगे। स्केड्यूल ही ऐसा बनाया। मैं ऐसी कई अक्लमंद माओं को जानती हूँ, अपने बच्चों को सुबह कहती हैं हम उठा देते हैं, मैं तो फजर पे उठे तो बच्चे भी उठा दिए, उसके बाद स्कूल आने तक वो बच्चों को जगाए रखती हैं। क्यों? कि जब खूब थक चुके होंगे, उसके बाद जब उनको खिलाया पिलाया, स्कूल आके वो सो जाते हैं। और मैं ऐसी एक माँ को जानती हूँ, स्कूल में ही आती थी, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैंने अपने बच्चे की इतनी अच्छी रूटीन बनाई है, जो ही तफसीर का टाइम आता है वो सोता है, और तफसीर के 2 घंटे 1.5-2 घंटा जो होता है उसमें वो आराम से सोता है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आप खुद दीन से लाइल रहें ताकि लाइल माएँ बने? लोग कहते हैं बच्चों की माएँ ना आए, मैं कहती हूँ फिर मैंने नहीं पढ़ाना। हमारा एक कहना चाहिए कि ऑडियंस जो सबसे बेस्ट ऑडियंस है वो बच्चों की माँ है। काम तो उन्होंने कल करना है। आप मुझे बताएं कि बच्चों को देखने लिए औरतें तो लाइल्म रह जाए तो बिगड़ी भी नस्लें लेनी है। गोया कि फिर मैं कह सकती हूँ कि बिगड़ी भी माएँ बिगड़े हुए बच्चे पैदा करेंगी, बिगड़ी भी जनरेशंस पैदा करेंगी। नतीजा क्या निकलेगा आप देख सकते हैं उसका नतीजा, नुकसान बहुत सारा होगा। और आप देखेंगे कि जब आप अल्लाह की किताब से जुड़ते हैं ना, करीब होते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होता है। तो ये चंद चीजें थी। जज़ाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा।